अस्तित्ववादी चिंतकों के अनुसार मनुष्य अपने चिंतन और निर्णय में स्वतंत्र है, मुक्त है। सार्त्र की मान्यता है कि यह स्वतंत्रता या अस्तित्व रक्षा की पृष्ठ 8 भावना किसी के द्वारा सौंपी नहीं गई है। इसका ज्ञान मनुष्य को स्वयं होता है। मनुष्य का हर निर्णय अपेक्षाकृत शुभ होता है और ऐसा कोई निर्णय हमारे लिए शुभ नहीं हो सकता है जो मानव मात्र के लिए अहितकर हो। सार्त्र का यह कथन आधुनिक कथा साहित्य से प्रमाणित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नए साहित्य सजेक ने बोध के जो धरातल खोजे हैं उनमें व्यक्तिवादी मूल्यों के साथ अस्तित्व रक्षा संबंधी मूल्यों का विकास भी शामिल है। रूढ़ियों का बहिष्कार, बंधनों के प्रति विद्रोह और एक स्वनिर्मित स्वच्छंद मार्ग का अनुसंधान भी नए साहित्य का नया बोध है। इसी में नैतिकता अनैतिकता का बोध भी शामिल है। श्लील अश्लील भी इसी स्वच्छंदतावादी मूल्यों के तहत विवेचन का अधिकारी है। इसमें संबंधित जीवनवादी मूल्यों का उद्घाटन व प्रयोग स्थापन नए साहित्य की प्रत्येक विधा से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। चाहे अज्ञेय हो, जैनेन्द्र हो, रेणु हो, भारती हो, नरेश मेहता हो, चाहे राजेंद्र यादव और मोहन राकेश हो, सभी में स्वच्छंदतावादी जीवन मूल्यों के ग्रहण व स्वीकार का भाव पर्याप्त गहरा है। ये जीवन मूल्य पुरुष व स्त्री दोनों में समान भाव से मिलते हैं, अतः साहित्य में भी इनका प्रयोग इन दोनों के ही सहारे किया गया है। आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता और संस्कारों के कारण नारी भी पुरुष की तरह विद्रोहिणी हो गई है। वह हर कर्म में क्षेत्र में पुरुष के साथ है। हर चौराहा, हर मंच और हर एक क्षेत्र उसके लिए खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में उसने भी पुरुष के साथ खड़े होकर न केवल अपने स्वातंत्र्य की घोषणा की है, वरन उसने उसे जीवन का अंग भी मान लिया है। परिणामतः यौन नैतिकता, प्रेम और विवाह पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो रही है। नर नारी के जीवन में तीसरे व्यक्ति की घुसपैठ भी इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में परिवर्तन या ह्रास की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। वैज्ञानिक विचारकों और भौतिकवादी चिंतकों ने जीवन को भौतिक चश्मे से देखा है, किंतु वे यह भूल गए कि जीवन की कुछ शाश्वत समस्याएं भी होती हैं। वर्तमान जीवन मूल्यों को प्रभावित करने वालों में मार्क्स, फ्रायड और सार्त्र के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। नया रचनाकार जिस खुले मन से लिख रहा है उसके पीछे ये सभी प्रभाव देखे जा सकते हैं। अतः बोध का नयापन जहां एक ओर समकालीन परिवेश और उसके दबाव से प्रेरित है, वहीं कतिपय बाह्य प्रभावों का बल पाकर भी अंकुरित और पुष्पित हो रहा है समूचा कथा साहित्य, नाटक साहित्य और कहानी साहित्य। बोध के इन नए बिंदुओं से संस्पर्शित है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चेतना और बोध के धरातल पर सर्वाधिक पृष्ठ 9 महत्व साहित्यिक चेतना का नवीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आधुनिकीकरण है। यद्यपि कुछ लोग इसे फैशन के नाम पर अस्वीकार करते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में उसकी अनिवार्यता और सटीकता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। समकालीन कहानीकार और उपन्यासकारों में जो आधुनिकता मिलती है वह फैशन परक नहीं है, उसमें प्रयोगों के प्रति अतिरिक्त आग्रह भर नहीं है, वस्तुतः समकालीन रचनाकार की दृष्टि में पैनापन है। वह सूक्ष्म और अंतर्भेदिनी है। इसी से साहित्य में जो बोध उभरा है वह कई स्तरों पर नया है। यह नयापन समाज से कटकर नहीं आया है, व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों में आई टकराहट व शून्यता से अद्भुत है। यह विद्रोह के लिए नहीं, अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए है, व्यक्ति के लिए है। इतना ही नहीं, साहित्य के प्रांगण में नए रचनाकारों की जो पौध उग रही है वह भी जीवन के जर्रे जर्रे को खुली निगाहों से देख रही है। उसी सवालिया और कौतूहली दृष्टि के स्पर्श से जीवन के किसी भी संदर्भ का बच पाना संभव नहीं रह गया है। आज ऐसे अनेक साहित्य सर्जक हैं जिनका साहित्य बोध के नए धरातल पर बड़े विश्वास से पैर जमाए हुए है। भाव बोध के इन नए धरातलों की अभिव्यंजना पुराने शिल्प से संभव न जानकर नए शिल्प का प्रवर्तन स्वाभाविक था। प्रत्येक नया भाव बोध और सौंदर्य बोध अनिवार्य रूप से नए शिल्प के लिए लालायित रहता है। भाव के अनुकूल शिल्प का निर्माण जहां साहित्य को संप्रेषणीयता के द्वार पर ला खड़ा करता है, वहीं साहित्य को नवीनता से भी जोड़ देता है। कारण भाव और शिल्प के बीच कोई विभाजक रेखा खींचना न तो संभव है और न उचित ही है, ये एक ही सत्य के दो पहलू हैं। शिल्प के नए धरातल के रूप में ही नवीन मूल्य आकार पाते हैं। नई पद्धति, नई प्रतीक योजना, नई शैली और भाषा के अपरिचित और अप्रत्याशित प्रयोग ही जैसे नवीन परिवर्तन की सूचना देते हैं। वे एक प्रकार से मूल्यों के रथ ध्वज हैं। आज हिंदी साहित्य में विशेषकर कविता और कथा साहित्य में प्रयुक्त नए शैल्पिक प्रयोग उपलब्धि बनकर हमारे सामने खड़े हैं। साहित्य की जीवंतता का प्रमाण उसके परिवेश बद्ध होने से ही मिलता है। जिस साहित्य में युग की धड़कन का स्वर नहीं है, जो प्रस्तरीकृत आदर्शों की बैसाखियों के सहारे चलता है और जिसमें भावबोध की नवीनता को पुराने रूप बंध से उजागर करने की भावना है, वह साहित्य हो ही नहीं सकता है। अतः जीवंत साहित्य में शैल्पिक नवीनता का आना न केवल अनिवार्य है अपितु औचित्य का जनक भी है। आधुनिक साहित्य में अपनी मनोगत भाव राशि की अभिव्यंजना के लिए यदि गद्य की नई नई विधाएं विकसित हो रही हैं, तो यह सहज प्रतिक्रिया है। पृष्ठ 10। रिपोर्टांश, लघु कथा, इंटरव्यू, एकालाप, रेडियो नाटक, यात्रा वृत्तांत आदि गद्य रूप इसी तरह के हैं जिनमें अभिव्यक्ति को सप्राण बनाने का कार्य किया गया है। स्वातंत्र्योत्तर काल में रचित साहित्य में जो शिल्प अपनाया गया है, वह नए शब्द प्रयोग, अभिनव अर्थ अर्थाभिव्यक्ति, नवीन प्रतीक योजना, कथानक ह्रास, सांकेतिकता, प्रतीकात्मकता, सूक्ष्मदर्शी चरित्रांकन, शिल्प संगठन और सशक्त किंतु नई शैलियों के प्रयोग से मुक्त है। यथार्थ के प्रति आग्रही होने के कारण नए साहित्य सर्जकों ने शब्द प्रयोग के क्षेत्र में नए प्रयोग किए हैं। इस शब्द प्रयोग में लोक जीवन की शब्दावली व आंचलिक शब्दावली का प्रयोग विशेष महत्व रखता है। अमृतलाल नागर जैसे उपन्यासकारों ने तो अपनी भाषा को कहीं कहीं इतना लोक जीवन से जोड़ दिया है कि उसमें गालियों तक की भाषा आ मिली है। राही मासूम रजा के आधा गांव में ठेठ ग्राम्य प्रयोग भी आ गए हैं और श्री लाल शुक्ल के राग दरबारी में भाषा के यथार्थ रूप की सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे शब्दों की आत्मा को टटोला गया है जिसमें अर्थ प्रेषण की अमित संभावनाएं निहित हैं। स्पष्ट ही नूतन शब्द प्रयोग द्वारा नए अर्थ को पर्याप्त आत्मीयता प्राप्त हुई है। यह नूतन अर्थवत्ता आधुनिक गद्य साहित्य की महत्तम उपलब्धि है। प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग भी समकालीन साहित्य के शिल्प की विशेषताओं को प्रसारित करता है। पारंपरिक प्रतीकों में अब इतनी क्षमता नहीं रह गई है कि वे अपने मूल रूप में अर्थाभिव्यंजन कर सकें। अतः या तो उन प्रतीकों को नया अर्थ प्राप्त हो गया है या फिर उनके स्थान पर वर्तमान परिवेश के गर्भ से नया प्रतीक स्वतः ही आ जन्मे हैं। औद्योगिकरण, यांत्रिकीकरण और वैज्ञानिक बोध के प्रसार के कारण प्रतीकों का स्वरूप और अर्थ भी तद्वत होकर ही सामने आया है। परिणामतः कमल की अपेक्षा कैक्टस का, चंदन की अपेक्षा रुपये का और चंद्रवत मुख के स्थान पर उसे अजायब घर के समान जिंदा मुर्दा भावों का आश्रय स्थल बनाया गया है। यथार्थ की चोट से बिखरने वाले सपने करारे व भुने हुए पापड़ की तरह हल्के से स्पर्श से चूर चूर हो रहे हैं और सौंदर्य का कोमल पक्ष यथार्थ के कटीले तारों में उलझ कर रह गया है। यो तो वर्तमान कथा साहित्य में विविध शैलियों का जन्म हो चुका है, किंतु प्रमुख शैलियों में पूर्व दीप्ति शैली, चेतना प्रवाह शैली, पत्र शैली, डायरी शैली और प्रतीक शैली का प्रयोग सर्वोपरि है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोल चुका है। इन द्वारों में कहीं भाव सत्य की नवीनता है और कहीं रूप बंध की। नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध आदि सभी क्षेत्रों में हुई प्रगति को देखें तो लगता है कि हम काफी आगे बढ़ आए हैं। जो साहित्य कभी आदर्श के प्रासादों में रहकर सीमितिक्रमण नहीं करता था, वही वहां अपना दम घुटता पृष्ठ 11 जानकर सड़क चौराहों और दुनिया की हलचल के बीच आ गया है। आज न तो उसे गली मोहल्लों में कोई दुराव है, न दुनिया की आपाधापी से। प्रस्तरीकरण आदर्श छिन्न भिन्न हो गए हैं, रूढ़ियों की जंजीरें टूट गई हैं, नैतिक बंधन बोझ बन गए हैं और मानव मानव के संबंध परिवेश के यथार्थ में तप कर अपने असली रूप में निखर आए हैं। नाटकों में जो परिवेश प्रसाद ने तैयार किया है वह बदल गया है, उनकी मंचीयता नई सज्जा के साथ सामने आ चुकी है। कहानियों और उपन्यासों की दुनिया में जो शांति थी वह आज दुनिया की हलचल से भंग हो गई है। भोगे हुए यथार्थ की तस्वीरें तथा कथा साहित्य में सर्वत्र दिखाई देती हैं। व्यक्ति अपने अस्तित्व संघर्षी रूप के साथ समाज की हर पुरानी व्यवस्था से लोहा ले रहा है। उसकी परिवर्तित स्थिति और मनः स्थिति के बिंब आधुनिक साहित्य की यथार्थ के सबसे पुष्ट प्रमाण है। मानव मानव के संबंधों का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। व्यक्ति स्वातंत्र और निजी चुनाव का दायरा चौड़ा होता जा रहा है। एक वाक्य में जीवन और साहित्य का रूप स्वरूप बदल गया है, भाव में भी और शिल्प में भी।